ओम शांति। सभी सेवाधारियों को कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर? बहुत अच्छा। ठंडी हवाएं हैं? बिल्कुल नहीं जाना आप। पहले मैं आपको आज की मुरली की दो सुंदर बातें याद दिला दूं। नशे की हैं, आपने नोट की हो न की हो तो उसे अंडरलाइन कर लेना, मजा आ जाएगा। बाबा सुना रहे थे कि मैं जब आया तो लोगों ने विरोध किया, पिकेटिंग की, हड़तालें हुई, लेकिन बाप के सामने किसी की चल न सके, चढ़ा न सा। कौन है हमारे साथ? स्वयं भगवान। लोग तो अज्ञानवश, कुछ भ्रांतियों वश विरोध करते हैं, लेकिन जो अचल अडोल रहते हैं और निश्चय में रहते हैं, उनका कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान की शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। अपने जीवन में इसको समा लें, बस ऐसे ही कि बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। एक सिंपल संकल्प भी हमें बहुत बल देगा। रोज रोज इसे करने से हमें उसके साथ का अनुभव होने लगेगा और उनकी शक्तियां फिर निरंतर हमारे साथ काम करेंगी। विनाश काल में ये चीज बहुत ही काम आएगी हम सबको। इस एक बात को जीवन बनाना है। दूसरी बात थी पवित्रता के बारे में। तो माताएं बाबा को कहती हैं, अपने से बात करती हैं, एक जन्म पवित्र बनने से विश्व की राजाई मिल रही है, तो मैं क्यों न पवित्र बनूं? अपवित्र बनकर विश्व की राजाई गंवा दूं? बहुत अच्छी है, स्वयं से बातें हैं। मुरलियों में ऐसी बातें आती हैं, उन्हें नोट भी कर लेना चाहिए और सीखना है। बाबा अपनी शक्ति सेना में बल भरते रहते हैं। भगवान को भी कितनी पालना करनी पड़ती है हम सबको पावन बनाने में। पीछे मुरली में आया था ऐसे ही एक रस भरा महावाक्य, मुझे तुम्हें पावन बनाने में बड़ा मजा आता है। सुरेश भाई, क्या भगवान भी आनंद लेता होगा कि ये गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं माया से, और मदद करता रहता है। तो अपने बच्चों का खेल देखकर और इस धरा पर आकर जो कार्य करता है, बाबा को भी बड़ा मजा आता है, आनंदित होता है। आज का वरदान किसको याद है बोलो? पदार्थों में आसक्ति वाले क्या नहीं बनेंगे अमित? यही तो बात थी असली। नहीं, प्रकृति जीत, पदार्थों की आसक्तियों से अनासक्त रहने वाले प्रकृति जीत भाव। और स्लोगन मेरे मेरे का त्याग करने वाले ही विश्व कल्याणकारी हैं। हमें ये बात जान लेनी चाहिए, जहां मेरा मेरा बहुत है, बड़ी गहरी बात है, सभी समझ लेंगे। तो हमारे चारों ओर एक मेरे मेरे की दीवार बनी है, हमारे वाइब्रेशंस उसके बाहर नहीं जाएंगे, वो दीवार से टकरा कर वहीं रहेंगे बस। मेरा, देखिए बड़ा सूक्ष्म है, और अध्यात्म का अर्थ ही है मेरे मेरे से मुक्त, निरहंकारी, नम्रचित, स्वमानधारी, इसको ही रूहानियत कहते हैं। अगले संडे की मुरली प्रकृति जीत पर आएगी, सभी उसका बहुत आनंद लेंगे। बहुत सुंदर मुरली है वो भी। मैंने पढ़ी तो याद आ गई जब बाबा ने चलाई थी, कितना आनंद हुआ था उस टाइम भी। अब बाबा के महावाक्यों के साथ तो बाबा के वाइब्रेशंस भी फैलते थे ना, तब तो जब बाबा बैठते ही थे सामने तो बहुत आनंद का माहौल छा जाता था। 85 की मुरली चल रही है, ओम शांति भवन बन चुका था 83 में, और वहाँ ये मुरली चलती थी, संख्या भी बड़ी आने लगी थी, 2,000, 2,500, 3,000। तो हमें पदार्थों से आसक्ति निकालनी है तब हम प्रकृति जीत बनेंगे। दो बातें हो गई, प्रकृति जीत स्थिति और पदार्थों में अनासक्त वृत्ति। पदार्थों की आसक्तियों का संबंध है हमारी कर्म इंद्रियों से, हमारी मन और बुद्धि से, इन्हीं से है ना। अब कई लोग खाने पीने से भी अनासक्त नहीं हो पाते, कोई चीज खानी है उसमें बहुत रस है, बहुत टेस्ट आता है, बहुत समय से खाते आए हैं, वो न मिले तो जीवन का स्वाद फीका लगने लगता है। ये न हो, मिल रही है बहुत अच्छी लगती है सुंदर, नहीं मिल रही है तो भी अति सुंदर। बाबा ने ये योगियों की स्थिति बताई थी मुरली में, सच्चे योगी श्रेष्ठ स्थिति वाले सेवा की बताई और ये आसक्तियों की बताई। चाहे 36 प्रकार के भोजन मिले, चाहे दाल रोटी, दोनों में समान आनंद, बहुत अच्छी बात है। कईयों को तो दाल रोटी में आनंद आता है, जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो मजा ही बिगड़ जाता है, होता है ऐसा। गुड़ रोटी, जब हम बचपन में थे तो खेतों में गुड़ रोटी नाश्ते में और छाछ, रोटी मोटी होती थी, दो दो ही देते थे, ज्यादा खाओगे तो दिन में नहीं खाया जाएगा, इतना मजा आता था गुड़ रोटी छाछ खा के। अब भी उसका मजा आता है अंदर में सोच के भी। आनंद क्या है? आनंद एक फीलिंग ही तो है जिसमें मनुष्य को आने लगे, बस वही उसके लिए सब कुछ है। सेवा के लिए बहुत अच्छी बात कही थी, चाहे हजारों के बीच में भाषण करने को मिले ये सेवा, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिले, दोनों में समान आनंद। बड़ी बात हो गई ना थोड़ी। किसी किसी को समान आनंद होता है, किसी को होता है नहीं, हमारी ड्यूटी तो केवल ज्ञान देने की है, ये सफाई करना या स्थूल काम ये तो हमारी ड्यूटी नहीं है, मार्क्स कम होते हैं। मुरली है बहुत अच्छी, एक 4 प्रकार की सेवा, बहुत सुंदर है वो मुरली यज्ञ सेवा, उसके भी बराबर उतने ही मार्क्स हैं जितने मनसा सेवा के या वाचा सेवा के हैं, उतने ही मार्क्स उसके भी हैं। तो यज्ञ सेवा को भी बहुत महत्व देना है। देखो मुरलियों में हम ध्यान दें, कभी बाबा वाचा की सेवा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि ज्ञान भी तो देना है सबको, और उस टाइम तो ज्ञान देने वाले बहुत कम होते थे, इसलिए प्रदर्शनी समझाने पर भी बाबा बहुत ध्यान देते थे। फिर कभी स्थूल सेवाओं पर भी बहुत ध्यान देते हैं, यज्ञ में हड्डी दे दो तो तुम बन जाओगे फरिश्ते, हड्डी हड्डी लगा दो, भगवान ने यज्ञ रच कर तुम्हारे हाथों में दिया है, अब तुम कैसे उसकी संभाल करते हो, हड्डी हड्डी लगा कर सच्चे दिल से। तो हमें अनासक्त होना है, ये कर्मेंद्रिय जीत स्थिति है, और कर्मेंद्रिय जीत बनने वाले ही प्रकृति जीत बनते हैं, चाहे वो आंखों की बात हो चाहे कानों की। आजकल आंखों के लिए सबसे बड़ी माया क्या है? मोबाइल, फेसबुक, आंखों से ही तो देखते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि ये विज्ञान के बहुत अच्छे साधन मिले हैं, हमें वरदान मिले हैं, इनके द्वारा बाबा की सेवाएं भी बहुत हो रही हैं। बाबा ने कहा था, विज्ञान के सारे साधन पहले स्थापना के कार्य में यूज होंगे, फिर विनाश के काम आएंगे। तो ये साधन बाबा के काम में यूज हो रहे हैं। देखो, कोई भी अच्छा मैसेज फटाफट दो चार मिनट में तो न जाने कहां कहां पहुंच जाएगा। अच्छी से अच्छी बात हम संसार को दे सकते हैं। और इस बार जो मनसा सेवा की बात की बाबा ने मुरली में, याद है, दो दिन पहले ही तो था, क्या क्या कर सकते हैं मनसा सेवा से, उसके सब अच्छे अनुभव करें, अपनों से शुरू करें। मैं एक विधि बता रहा हूं। आपका कोई व्यक्ति ज्ञान में नहीं चल रहा है, विरोध करता है, सब जगह होता ही है हरेक के साथ। आप अच्छा योग करके, समझो 15 मिनट अच्छा योग किया और ऐसा अभ्यास करना कि हम सूक्ष्म रूप से उसके पास पहुंच गए और उसे ज्ञान दे रहे हैं, उसकी भ्रांतियों को मिटा रहे हैं कि तुम जो ये समझते हो ऐसा नहीं, ऐसा है। भगवान आकर किस तरह ज्ञान दे रहा है वो थोड़ी सी बात उसे सुना दे, लेकिन कुछ दिन रोज कर दें सेम टाइम, उसके विचार आपको बदले हुए नजर आएंगे। एक प्रयोग करेंगे मनसा शक्ति का। दूसरा, कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारियां बढ़ती जा रही, संबंधों में आपके कोई बढ़ गई हो, जिसको आप जानते हो पहले, उन पे प्रयोग करेंगे। आप ये संकल्प करेंगे हम वहां पहुंच गए, इसको कहते हैं फरिश्ते रूप से पहुंचना। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इसके लिए ये नहीं मुझे पहले फरिश्ता बनना है। देखो, जैसे मैं आपको अभी कहूं, हम सब यहां बैठे हैं, चलो बाबा के रूम में बैठो एक सेकंड में, इजी होगा ना। चलो मधुवन में बाबा के रूम में चलें, शांति स्तंभ पर चलें, मेरे बोलने के साथ साथ पहुंच गए ना वहां। तो इसमें क्या रहस्य है कि हमारा सूक्ष्म शरीर वहां निर्मित हो जाता है, और जितना हम अच्छा अभ्यास सारा दिन और सारा समय करते होंगे उतना ही ये स्वरूप जल्दी क्रिएट होता है। जहां का भी आपने संकल्प किया, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर संकल्प द्वारा रचित शरीर है, जहां का भी संकल्प किया वहां पहुंचे। कहा ना ये पुष्पक विमान है, ये दूरदर्शन है, कई सब थे ना बहुत अच्छे अच्छे, तो पहुंचे वहां और उसके पास जाकर जैसे उसके सिर पे हाथ रख दिया, एनर्जी दी, उसको वाइब्रेशंस दे दिए, सामने से दृष्टि दे रहे हैं, उसके पास खड़े हुए अच्छे संकल्पों के साथ, तुम निरोग हो, तुम बहुत पावरफुल हो, घबराओ नहीं, स्ट्रांग हो जाओ, ये बीमारी आई है चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आप ये महसूस करेंगे उस व्यक्ति को राहत मिली जो घबराया हुआ था, क्या होगा, परेशान था, उसको राहत मिली। ये छोटे छोटे प्रयोग आप किया करें। आप यहाँ हैं या आप अपने घर में हैं, ऐसा अभ्यास करें, मैं फरिश्ते रूप से कहीं भी पहुंच गया और वहां मुझसे चार ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, बाबा के वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं, मुझसे चार ओर फैल रहे हैं, ये बहुत अच्छा अभ्यास करते रहेंगे। तो जितने जितने हम आसक्तियों से मुक्त होते रहेंगे, अभी गहराई से एक बात पर विचार करेंगे सभी, आसक्तियां हमें बांध रही हैं। देखने में आसक्ति है, खाने में आसक्ति है, सुनने में आसक्ति है, ये हमें शरीर में बांध रही हैं। हम मुक्त नहीं हो रहे हैं कि हम सेकंड में प्रकृति से ऊपर चले जाएं। प्रकृति जीत के दो अर्थ हो गए, एक प्रकृति है ये हमारा शरीर, इससे न्यारे हो जाना, दूसरी है जो संपूर्ण प्रकृति है, इससे परे परम धाम है, सूक्ष्म लोक है, वहां पहुंच जाए। तो जितना जितना हम जल्दी इन दोनों स्थितियों में स्थित होंगे, तो अर्थ हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा कि हम प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो गए, तो हम बन जाएंगे प्रकृति के मालिक। इसको कहेंगे प्रकृति जीत स्थिति। तो ये देह के तत्व संपूर्ण प्रकृति से मिले हुए हैं। लोगों ने, पहले के ऋषियों ने बहुत सुंदर चिंतन किया है, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। इसे कहा पिंड और इस सारे को कहा ब्रह्मांड। केवल ब्रह्मलोक नहीं, उन्होंने सारे को ब्रह्मांड कहा। तो जो इसमें है वही इसमें है, ये अगर हम सूक्ष्म स्टडी करें तो हमें पता चल जाएगा। तो ये प्रकृति इस संपूर्ण प्रकृति से मिली हुई है। एक मुरली में पढ़ रहा था, अभी आप सुनेंगे दो चार दिन में, तो बाबा से किसी ने प्रश्न किया था कि बाबा ये जो तारे हैं आकाश में, क्या ये तारे उतने ही हैं जितनी आत्माएं हैं? बाबा से साकार में प्रश्न किया था, तो बाबा के हाव भाव से जो मुरली से समझ में आता है, मैं समझ गया कि ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये गुह्य बात आगे चल के समझाएंगे। एक दूसरा प्रश्न भी उसी में आप सुनेंगे, ये बड़ी गुह्य बात बाबा की मुरली में किसी ने बाबा से प्रश्न किया साकार में, बाबा क्या अष्ट रतन एक साथ आ जाएंगे नीचे? मुरली में आ रहा है ये, अभी चार दिन में आप सुनेंगे, संडे से पहले ही होगा या एक दिन बाद। तो बाबा ने उत्तर दिया कि अगर सभी एक साथ आ जाते तो श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा महिमा क्यों होती? फिर आगे नहीं उत्तर दिया, फिर वही कहा ये गुह्य बात है, आगे चलकर समझाते रहेंगे। अभी देखो श्री कृष्ण नारायण, उनका जो प्रिंस होगा वो भी तो अष्ट रतन है, तो वो तो थोड़ा बाद में आएगा ना, समझो 40 साल या 50 साल तो लेट हो जाएगा ना भाई। कुछ समय में उनका स्वयंवर होगा, फिर कुछ समय के बाद संतान होगी, तो 40-50 साल लेट है ना। तो ऐसा लगता है कि सभी अश्रतन ये 50-60 वर्ष के अंदर अंदर धरा पर आ जाएंगे। तो बड़ी गुह्य रूढ़ियान बाबा कर रहे थे मुरली में। तो हम इस प्रकृति से ऊपर रहे, ये हमें बांध रही है, आत्मा को बंधन में बांधाई है देह ने, इसलिए बाबा देहवान की चर्चा करते हैं। इसी से मनोविकारों की उत्पत्ति हुई है, इसी से आसक्तियां और मोह पैदा हुआ है। तो जितना जितना इस देह से हम डिटैच होते जाएंगे उतना उतना निर्मोही भी होंगे, शक्तिशाली भी बनेंगे, और ये जो आसक्तियां हैं भिन्न भिन्न जगह, ये खत्म होती जाएंगी। अब देख सकते हैं, मैं माताओं को कह रहा हूँ, मान लो आपके पास एक बहुत अच्छी कीमती जेवर है, उसमें आसक्ति तो रहेगी, लेकिन आपका योग बढ़ता जा रहा है, आपकी शरीर स्थिति बढ़ती जा रही है, उसमें जो सुख मिल रहा है उससे वो आसक्ति आप ही ढीली होती जाएगी। देख सकते हैं आप, आपको वस्त्रों में आसक्ति है, किसी को जूतों में होती है, अच्छे अच्छे जूते चाहिए भाई, कोई भी अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छे नहीं है, बेकार है, हमें तो और चाहिए। जैसे जैसे ये प्रकृति जीत की स्थिति बनती जाएगी, इन चीजों में अनासक्त वृत्ति स्वतः ही आती जाएगी। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, पनीर बना तो लोग एक एक गिलास भर लेते हैं, ठीक है, कोई हर्जा नहीं है, खाने में खाएं अच्छी तरह से, लेकिन जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ेगी ये सब हल्का लगने लगेगा कि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। अनासक्त वृत्ति होती जाएगी और आत्मा जो इसमें बंधी है, ये कर्मेंद्रियों के रस जो आत्मा को बांधे रखते हैं नीचे, इससे हम मुक्त होते जाएंगे। इसका सभी को बहुत अच्छा अभ्यास करना ही है, क्योंकि नहीं तो विनाश काल में यही चीजें कष्ट देंगी। अब मैं मोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, चाय है, एक नेचुरल सी चीज बनी हुई है, हम लोग भी दो बार पीते ही है, यज्ञ में शुरू करा दिया था बाबा ने, यज्ञ में पहले चाय नहीं पी जाती थी, लेकिन जब पूरा यज्ञ आबू में आया तो यहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, तो हाल बिगड़ने लगा सबका, तो डॉक्टरों ने राय दी कि यहाँ चाय पीनी ही पड़ेगी, तो तब से यज्ञ में दो बार चाय पीने का सिस्टम चालू हो गया था। फिर कोई आते हैं तो नाश्ते के बाद भी पीते हैं, कोई सवेरे उठते भी पीते हैं, वो अलग अलग बात है। लेकिन मान लो विनाश काल ऐसा आ गया कि हमें चाय नहीं मिलती, नहीं मिलेगी पक्की बात है, तो क्या हमें जो वो चाय की आसक्ति है या तलब है वो सिर दर्द करेगी, या हम सहज भाव से उससे बाहर रहेंगे, है तो ठीक है नहीं है तो ठीक है, ईश्वर भी वही गति काम करेगी। अगर हम प्रकृति के मालिक बन गए हैं तो चाय न मिलने पर भी हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा चाय पीने पर रहते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण दिया, चाय कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, पर ये स्थिति का प्रभाव होगा, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है देह और इसमें जो ब्रेन है वो इन सब चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, फिर संकल्प से भी हो जाता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं, एक टाइम आप चाय न पिए या खत्म हो गई, मान लो आप संकल्प करें मैं चाय पी रहा हूं, संकल्प से पी ले, आपको अनुभव होगा कि तृप्त हुए। विनाश काल में ये अभ्यास भी बहुत काम आएगा। तो हमें पदार्थों से अनासक्त होना है, तो हम प्रकृति, बोलो, प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, इस पर जीत हमारी हो जाएगी और एक बहुत बड़ी चीज हमें प्राप्त होगी कि ये जो हमारी देह की प्रकृति है ये हमें कष्ट नहीं देगी। मैं ये बात बहुत अनुभव में सुनाता हूं कि अगर अशरीरीपन बहुत अच्छा रहे तो कोई भी बीमारी आपको कष्ट नहीं देगी, सहज पार होगी, आ गई कितने भी फोर्स से जाएगी सहज भाव से, और आपको ऐसा लगेगा आपको हल्का करके चली गई, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो, कर्म कुछ नष्ट हो गए उसमें और बोझ उतर गया। तो हमें प्रकृति जीत स्थिति प्राप्त करनी है, बहुत अच्छा योग भी चाहिए इसके लिए। अब विनाश काल में क्या होगा उनके साथ जो प्रकृति के मालिक बन गए, बोलो है? सब सहज होगा। और बोलो, विजय भाई ने तो बताया है, बहुत सुख भी मिलेगा, बोलो अमित, दूसरों को मदद करेंगे, प्रकृति मदद करेगी, यही बात होगी सब। बस एक तो जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा, मान लो आपको दवाई भी चाहिए ना तो मिलती रहेगी, और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी वो जब मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहां खत्म हो गया होगा उसका स्टॉक, कि भाई ये तो दवाई नहीं, दूसरी भले खा लो, अब दूसरी तो नहीं खाएंगे। ये बड़ी सूक्ष्म गति काम करेगी। बाबा ने मुरलियों में इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि जिनके पास आठों शक्तियां होंगी उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा, और जिनके पास शक्तियों की जितनी कमी होगी उतना ही अभाव होगा। एक बात और आपको याद दिला दूं विनाश काल के लिए, बाबा ने बताया हुआ है जैसे बिल्ली के बच्चे आग में भी सुरक्षित रहे, बाबा भी अपने बच्चों को विनाश की अग्नि में सुरक्षित रखेगा। तब हमें ये भी महसूस होगा कि हमने जो बाबा के लिए कुछ किया है ना, उसके यज्ञ के लिए, उसका रिटर्न वो कैसे कैसे दे रहा है, बहुत ही अच्छे अनुभव रहेंगे। बाबा हमारे प्यार का रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा देगा, जिसने सच्चे दिल से सेवा किया। भाई बहने सेवा में आए हैं, अब तो आपको लगता होगा भाई सेवा कर रहे ठीक है, भाग्य बन रहा हमारा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट विनाश काल में दिखाई देगा। मैं आपको याद दिला दूं, 6-8 मास या 1 साल पहले बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली में, कि जिन्होंने बाबा के कार्यों में थोड़ी भी मदद की है, वो ज्ञान में न भी चले हों न चल रहे हों, उन्हें भी प्रकृति विनाश काल में सहयोग देगी। और जिन्होंने जीवन ही लगा दिया हो, प्रकृति तो उनके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी, बताओ मालिको क्या आज्ञा है, होगा या नहीं होगा, कहां थोड़ी सी मदद करना और कहां जीवन लगा देना। तो जिन्होंने जीवन लगाया है सब बैठे हैं, बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, छोटी कुर्बानी नहीं है। हमें तो लगता है, हमें थोड़ा कोई लगता है, हम तो मौज मना रहे हैं आनंद ही आनंद है, पालना हो रही यज्ञ से, जीवन क्या लगाया, जीवन निश्चिंत बना दिया है बाबा ने, लेकिन इसका महत्व बहुत जबरदस्त है। इसी के कारण संन्यास प्रारंभ होगा भक्ति में, लोग त्याग किया करेंगे, भगवान के लिए गाया करेंगे, हम तुम पर बलिहार, बहुत सारे भजन इस तरह के हैं, तो हमें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। स्लोगन पर आ जाएं जरा, मेरा मेरा जमेले हैं ये, फेरे हैं ये, तेरे मेरे के फेरे हैं ये। बाबा की जो आप मुरली सुनेंगे संडे को, मैं उसकी पहली लाइनों का एक राज आपके ध्यान में दे देता हूँ, आप उसे अंडरलाइन करके नोट कर लेना कि बाबा राज अधिकारियों की सभा देख रहे हैं, ये सभा बहुत सुंदर शोभनीक, लेकिन ये आत्माएं बहुत निर्माण और स्वमानधारी हैं। दो बड़ी क्वालिटी, निर्माण निरंकारी और बहुत स्वमानधारी हैं। तो जहां स्वमान बहुत अच्छा होता है, वहां ये मेरा मेरा समाप्त हो जाता है, ये मेरा बहुत छोटापन है, ये तो संसार में है ना बहुत ज्यादा मेरापन, वही यदि अलौकिकता में भी रहे तो अंतर नहीं रह जाता। बाबा ये कहते ही हैं कि जब तुम मेरे बन गए हो, तुम्हें सब कुछ चेंज कर लेना है, अपना सब परिवर्तन कर देना है। तो देखिए मेरा, हमारे पास जो यज्ञ में है उनमें कौन सा मेरापन रहता है, सब जानते हैं नहीं, मेरापन, मेरा डिपार्टमेंट, तुमने मेरे डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप क्यों किया। यहां नहीं कहते, मैं देखता हूं ज्ञान सरोवर में ये चीज अति कम है, लगभग मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, किसी किसी में है थोड़ा बहुत मेरा डिपार्टमेंट, लेकिन हम, ये तो बाबा का कार्य है और बाबा के इस कार्य में जो हम निमित्त बने हैं, हमारे इस निमित्त भाव की और बाबा के इस यज्ञ की शोभा ये है कि हमारे द्वारा सबको सुख मिलता रहे, हम दुआएं लेते रहे। मैं हंसी में सदा कहता हूं, आपने सुना होगा, माल प्रभु जी का, बीच में हम हैं, अगर हम प्रभु जी के माल से भी सुख न दे पाए तो जब हमारा होगा तब तो सब कुछ अंदर तालों में बंद कर देंगे, एक पाई नहीं मिलेगी तुमको, बच्चों को भी कहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है, सब मेरा है। तो बाबा ने यज्ञ रच कर अब यज्ञ को भरपूर किया है, हमारा काम है सबको सुख देना और सबसे दुआएं लेना। तो ये मेरापन किसी भी तरह से न हो, इससे अभिमान में वृद्धि होती है। क्या क्या मेरापन होता है जरा 10 बातें निकाल लें। जैसे मैं घर की बड़ी हूँ, मैं घर में कमाने वाला हूँ, मेरी ही बात मानी जाए, बोलो आगे आप बोलो, मैं राइट हूँ, क्या बोला, मेरे सिवाय कुछ होता ही नहीं, तुम क्या जानो, तुम तो कुछ नहीं करते, बोलो, बोलते जाओ फटाफट भाई, हैं? मेरे सिवाय ये काम कोई कर ही नहीं सकता, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, तुम तो कल के आए हुए छोकरे हो। बोलो, मैंने बोले, बोलो ना, मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है, फिर आगे भी होता है, मुझे इसका सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है। ये मैंपन रहता है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे, ये भी है, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे चिंताएं रहती हैं। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना दूं, है तो किसी का, न तो मुझे याद वो कहाँ के थे और न बताने की जरूरत। एक परिवार आया, बहन जी, उसकी लड़की अच्छी पढ़ी लिखी और पति। माता जी शिकायत कर रही थी, मेरा जो ये पति है घर में गुमसुम रहता है, बात ही नहीं करता है। मैंने समझ लिया कहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो भी आ गया बेचारा। मैंने कहा, क्यों भाई गुमसुम क्यों रहते हो? तो क्या पता चला? अब बेचारा, उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं था दुनिया में, वो कैसे सुनाए? जैसे ही मैंने पूछा, फूट पड़ा सारा, आंखें भी भर आई। ये लोग मुझे बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, रात दिन मेरी कमियां मुझे गिनाते रहते हैं दोनों। तो मैं चुप हो गया हूं। मैंने कहा, चुप तो हो गए लेकिन उदास भी तो रहते हो। कहा, मुझे खुशी नहीं रहती है। अब ये बात सुन के वो दोनों रोने लगी। अब उनकी बात आ रही थी ना। मैंने माता जी को कहा, माता जी राज करती होगी पति पे, बुरा नहीं मानना माता है, अगर उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन परिणाम यही था कि वो राज करती है। वो कहती है, जो मैं कहूं वही तुम्हें करना है, फोन भी कहीं नहीं करना मेरी आज्ञा के बिना। किससे बात कर रहे थे? तो बेचारा एकदम उसने बोल दिया शब्द, उनके आगे ही बोला, मेरी तो भाई जी इच्छा होती है सुसाइड कर लूं। मैंने उनको कहा, देख लो तुम, तुम्हारे व्यवहार से वो आत्मा हर्ट हो रही है और यहां तक स्थिति आ गई कि वो जीना नहीं चाहता, तुम अपने को चेंज करो। बेचारी आई तो थी, शिकायत ले गए लेकिन फंस गई। मैं कहा, देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपको अगर घर में सुख शांति चाहिए, बहुत प्रेम का माहौल बनाना है, आप सोचते हो पति भी बहुत खुश रहे, हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, तो एक दूसरे को पहचान कर सम्मान दो। अगर हम दूसरे को करेक्ट ही करते रहें, तुम ऐसी हो, तुमने ये किया, तुम सदा ही ऐसा करते हो, तो क्या परिवारों में खुशी और प्रेम का माहौल रहेगा? सभी सीख लें। करेक्शन देना, दूसरों को सिखाना, उसका एक तरीका होता है, डांट डपट के, अधिकार से, रोब से, किसी को सिखाया नहीं जा सकता। भले भाई की भी कुछ थोड़ी बहुत गलती होती हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी भावनाओं को सदा हर्ट किया जाए। हम सभी संबंधों में इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे। यहां भी कहीं ना कहीं मेरापन समाया होता है, हमें रहता है मैं कमाने वाला हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ परिवार का। देखिए, मैं जिम्मेदार हूँ ये एक बहुत अच्छी बात भी है, ये हमारे विचारों में ऊंचाई लाती है। भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे सबका ध्यान रखना है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ इसकी चिंताओं में आ जाना, ये मैंपन हो जाता है। इसमें बाबा अलग हो गया हमसे, मैं जिम्मेदार हूँ लेकिन बाबा भी मेरे साथ है, फाइनली जिम्मेदारी उसकी है, हम निमित्त हैं। ये भावना, मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं न कमाऊं तो परिवार कैसे चलेगा, मेरे कारण तुम सब हो, कई कई तो ये बोल देते हैं, ये अहम हो गया, ये बहुत अच्छा बड़ा ईगो हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं। मैं न कमाऊं तो और कोई कमाएगा। कितने परिवारों में होता है, पति की मृत्यु हो जाती है, कमाने वाला नहीं होता तो क्या परिवार नहीं चलते? माताओं ने देखे होंगे बहुत सारे केस, चलते हैं या नहीं परिवार? चलते हैं। क्यों? सबका भाग्य अपना अपना है। न जाने आपके घर में कौन भाग्यवान आत्मा आ गई हो जिसके कारण सब खुशहाली हो। कमाने वाला भले ही एक दिखता हो लेकिन न जाने किसके कारण हो। मैं आपको सेवाओं के फील्ड की एक सूक्ष्म बात सुना दूं जिसको कोई जानते नहीं है। मैं सब जगह जाता हूं, इंचार्ज बहने अलग हैं, लेकिन मुझे कहीं कहीं दिखाई देता है इनकी सेवा की वृद्धि इनके कारण नहीं, इस छोटी के कारण है, क्योंकि वो बहुत पवित्र आत्मा उनके सेंटर में है, उसकी स्थिति बहुत ऊंची है, उन्हें पता नहीं इस बात का, लेकिन वहां सेवाओं की वृद्धि इनके कारण है। अभी मैं एक जगह गया, ये बात भी मुझे आपको सुनानी है, बहुत सुंदर बात। तो वहां बहुत भाई बहने सवेरे योग करने ही आ जाते हैं 4 बजे, कम से कम 100, 4:15 बजे तक 200, 4:30 बजे तक 500, क्लास ही बड़ी है, बहुत बड़ी है। और फिर योग के बाद चाय बना के रखती है मैंने थर्मस में, जिसको चाय पीनी पिया, और फिर मुरली सुनते हैं, और मुरली सुनकर 6 बजे तक अधिक से अधिक सभी अपने घर वापिस, कभी कभी 5:45। इससे उनकी सेवा बहुत वृद्धि को पा रही है। एक ही सेंटर में थोड़ी सी गीता पाठशालाएं हैं, 2000 स्टूडेंट हैं विजय भाई, मैंने उनको बताया आपकी सेवाओं, और उनको वो कोई बड़े प्रोग्राम नहीं कर रहे। हम गए, हमने कहा पब्लिक प्रोग्राम तो कर लो एक, कहा नहीं हमारे तो ऐसे ही बहुत अच्छा चलता है। वो न कोई भाग दौड़ न पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसी एक बात के कारण उनकी सेवाओं की वृद्धि बहुत हो रही है, और जो भी क्लास में आते थे उनके चेहरों से उनकी रौनक दिखाई दे रही थी कि यहाँ पालना बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत सुंदर है। और एक जगह में गया, मैंने कहा बहन जी सवेरे योग कराना है क्या, मुरली के बाद कुछ बोलना है? बहन जी ने कहा नहीं भाई जी, हमारी मुरली तो 8:30 बजे शुरू होती है। तो क्या होगा? नाश्ता करके काम वाम पूरा करके ही आते हैं वो, तो सेवाओं की वृद्धि नहीं होती, स्थितियों में बल नहीं भरता। खा पी के आए हैं, अरे पेट भी खाली हो तब तो बुद्धि खाली रहेगी, दोनों भरे होंगे, लेट उठे होंगे निश्चित रूप से, 6 बजे से पहले कोई नहीं उठा होगा क्योंकि 8:30 मुरली में जाना है, निश्चिंत कर दिया ना सबको। और वहां था कि 4 बजे सेंटर में पहुंचना है, तो अधिकतर लोग 3 बजे उठ रहे थे, कोई 3:30 तैयार होके सेंटर में आ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज है हमारी सेवाओं की वृद्धि की। मैं तो सोचता हूं अगर सभी सेंटर इसको अपना ले, कई सेंटरों ने ऐसे अपनाया हुआ कि सवेरे की पहली क्लास 5:30 करते हैं, 6:15 6:30 छुट्टी, फिर जो दूसरे आते हैं वो 7:30 से आ जाते हैं, फिर सेकंड क्लास 8:30 तक पूरी हो जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो जल्दी आ रहे हैं उनका आनंद कुछ और होता है, जो थोड़े लेट आ रहे हैं उसका आनंद सेकेंडरी हो जाता है। फिर कई जगह तो 11 बजे भी क्लास होती है, शाम को 4 बजे भी होती है, और इवनिंग भी होती है 7 बजे से, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। इन सेवाओं के कारण उमंग उत्साह भी बहुत रहती है, अपनी स्थिति भी अच्छी, बहने भी चुस्त अलर्ट, और आने वाले भी सब चुस्त और अलर्ट होते हैं। तो सभी आज के वरदान पे ध्यान देंगे, अनासक्त प्रकृति जीत, सभी को आनंद देना ज्ञान सरोवर में सेवाधारी, कुछ कुछ सीख कर जाना, बहुत अच्छा लगता है ये तो है ही, लेकिन जितना हम अच्छा अच्छा सीखते हैं, ज्यादा बातें नहीं, एक दो भी सीख ली तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। ओम शांति।